किया कि विद्यार्थियों के लिए निष्काम कर्मयोग का क्या स्वरूप होना चाहिए। सेठ जी ने उत्तर दिया, विद्यार्थियों के लिए निष्काम कर्मयोग का यही रूप हो सकता है कि जितने लोग बाहर से विद्यालय देखने आवे तो उनकी और जो बालक विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी सेवा निष्काम भाव से करें। अपने जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनकी भी निष्काम होकर सहायता करें। सेवा या सहायता भगवान का रूप समझकर करें तो बड़े लाभ की बात है। सेवा स्वयं करें, प्रेम पूर्वक करें और भाग भाग कर करें, दौड़ दौड़ सेवा के काम में पीछे नहीं रहे। इस प्रकार सेवा करें जैसे कहीं धन की लूट हो रही हो, खूब रुपया कोई फेंका हुआ और उसको लूट रहे तो आदमी दौड़ दौड़ करके लूटता है, ऐसे लूटना चाहिए। और ये समझना चाहिए जैसे मुझे रुपया ज्यादा मिले लूटने वाले को, ऐसे विद्यार्थी को भावना रखनी चाहिए कि मेरे हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सेवा का काम आवे। एक बात का ध्यान करें कि सेवा करते हुए अभिमान नहीं आना चाहिए और एक मान बढ़ाई की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि मान बढ़ाई की इच्छा हो जाए या कोई दूसरा आदमी मान बढ़ाई करे तो रोने लग जाए, मैं इस योग्य नहीं हूं। अपने कानों से मान बढ़ाई सुने तो निंदा से ज्यादा दुख होना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों मेरी बड़ाई करते हैं, मेरे को अप्रसन्नता होती है, दुख होता है, मैं इसका पात्र नहीं हूं। मेरी बड़ाई करने से न आपका हित है और न मेरा हित है, अतः अपने को प्रशंसा का पात्र नहीं समझना चाहिए। देखो भरत जी का उदाहरण अपने सामने है। जब भरत जी को राज देने की बात वशिष्ठ जी ने कही तो वे बड़े दुखी हो गए और रोकर कहने लगे, आप जो राज्य की बात कहते हैं इसमें न तो मेरा हित है न आपका हित है, और जो राज्य की बात आप चलाते हैं मुझे दुख होता है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। इसके आधारित अधिकारी तो भगवान राम है, तो मुझे क्षमा करो। ये भरत में कितना निष्काम भाव है, इस तरह से निष्काम भाव होना चाहिए। यदि कोई मान बढ़ाई करे तो चरणों में गिर जाए, उसके चरणों में गिर जाए कि हमारी बड़ाई क्यों करते हो, हमारा इसमें क्या है क्या है। यदि आप चरणों में गिर जाओगे वो चुप हो जाएगा, फिर वो हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। मान बड़ाई प्रतिष्ठा जो है वो अमृत के समान लगती तो है पर उसको जहर के समान समझे। जैसे कोई लड्डू है, हमको किसी ने कह दिया कि इसमें जहर है, तो हमको मालूम तो है कि इस लड्डू के अंदर मीठापन भी है पर जहर का ध्यान पहले जाता है, यदि हम जहर ये लड्डू खा लेंगे तो जहर से मर जाएंगे। इस माफिक मान बड़ाई को समझे कि भाई ऊपर से अमृत के समान लगती है परंतु ये अंदर से जहर के समान है। और जो बुराई है निंदा है इसको अमृत के समान समझना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि मान बड़ाई से अंत में नुकसान हो सकता है परंतु बुराई से और निंदा से अंत में लाभ होता है, नुकसान नहीं होता है। इसलिए अच्छी है अमृत के समान और निष्काम सेवा करें। कोई अच्छा लड़का हो तो विद्यार्थी को चाहिए कि वह उसके जूते उठाए, उसकी हर प्रकार से सेवा करे, वह प्रभावित होकर रहेगा, कहेगा कि बड़ा अच्छा लड़का है। और हम देखते हैं कि विद्यालय में नई बात है, आज तक कभी भी विद्यालय में यह सेवा भावना नहीं देखी, तो इसमें विद्यालय की भी बड़ाई है कि देखो यहां अच्छे लड़के कितना नम्रता का बर्ताव करते हैं। विद्यालय का भी प्रचार होगा, सदाचार का प्रसार होगा और अपने अंदर प्रसन्नता रहेगी। जो भी काम मिल जाए, सेवा मिल जाए तो ऐसा समझना चाहिए मानो भगवान मिल गए। जिस प्रकार सुनार को सोने की खान में पत्थर के बीच में सोना दिखता है, इस माफिक अपने को सेवा के अंदर भगवान देखने चाहिए। कहते हैं कि अध्ययन के विषय में क्या ध्येय होना चाहिए। उत्तर देवे सेठ जी, हम विद्या पढ़ते हैं तो किस लिए? पेट भरने के लिए, हमारे शरीर की पूर्ति के लिए, कहीं नौकरी मिल जाएगा तो काम चलेगा, इसलिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। क्योंकि मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसमें जो कुछ मिलता है वो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सेवा करो भगवान की प्राप्ति के लिए, भोजन करो तो वो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सो नींद ले तो वो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो भी करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो। क्योंकि इसके अलावा अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे कोई लोभी आदमी दुकान खोलकर बैठता है तो वो निठल्ला बैठा है तो भी रुपए के लिए, ग्राहकों से बात करता है तो रुपयों के लिए, किसी से भी फोन पर बात करता है तो रुपए के लिए, रात तक दुकान पर भी बैठता है तो रुपए के लिए, बुहारी निकालता है तो रुपए के लिए। बताओ बिना रुपए के लिए दुकान में क्या वो ऐसा काम करता है बिना रुपए के लिए करता हो? ऐसे ही हमारी ये मानव शरीर रूपी दुकान है, इसमें भी हम भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। गीता में कहा यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तो जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो तू हवन आदि करता है, जो दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तपस्या करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। क्या होगा कि सुबह सुबह फल ही रहे वह मोक्ष से कर्म बंधन ही। कर्मों को मेरे अर्पण करने से तुझे सुबह सुबह कोई फल नहीं लगेगा, तू उनसे मुक्त हो जाएगा। और वो मुक्त हुआ हुआ विमुक्त माम उपेशेषी मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सब काम परमात्मा के लिए करना चाहिए। जो सभी काम परमात्मा के प्राप्ति के लिए करता है ऐसा भाव होता है, उसके द्वारा कभी पाप होता ही नहीं है, गलती होती नहीं है, अपराध होता ही नहीं है। छोटा ही छोटा काम देख लो, भोजन कोई लो, यदि कोई भोजन करता है भगवान के लिए करता है तो उसके मन में ये भावना रहती है कि भोजन करने से शरीर चलेगा और शरीर रहने से हम भगवान का भजन करेंगे, तो भोजन का संबंध भगवान से हो गया। जैसे बिजली का तार है वो दूर तक खींचा रहता है, परंतु उस तार को करंट वाले तार के साथ जोड़ देते हैं तो उसमें भी करंट आने लगता है। ऐसे ही सब क्रियाओं को भगवान के भजन के साथ जोड़ना चाहिए, ये अनन्य भाव है। और ये भी सोचना चाहिए कि हम भोजन नहीं करते तो भगवान को भी कष्ट होगा, भगवान को भी उपवास करना पड़ेगा। अब हम एकादशी का व्रत आदि करते हैं तो भगवान को भी व्रत की सामग्री भोग लगाते हैं उस दिन। यदि हमने घर में एकादशी की और एकादशी में हमने जो कुछ बनाया तो वे भगवान को वही भोग लगाएंगे जो हम खाते हैं। तो ये समझ करके कि भाई हमारे खाए हुए से भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए भोजन करना है। अब कोई पूछेगी सोते क्यों, सोने से क्या भगवान मिलते हैं? क्या मिलते हैं कि खाने पीने सोने से भगवान मिलते हैं? कि भाई हम नहीं सोएंगे तो भगवान भी नहीं सोएंगे, और भगवान नहीं सोएंगे तो भगवान को दुख होगा। तो हमारे कारण से भगवान को दुख हो ये अच्छी बात थोड़ा ही है, इसलिए अपने सो जाओ भगवान को आराम मिलेगा। मैं मेरे लिए नहीं सोता हूं, भगवान के लिए सोता हूं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान नहीं सोएंगे तो कहेंगे कि ये दिन भर खटता रहता है, रात में सोता नहीं है, इसलिए भगवान नहीं सोएंगे तो भगवान के लिए सोना चाहिए। हम खाते हैं तो भगवान के लिए, सोते हैं भगवान के लिए, वह भी भगवान के लिए ही करें जो भी करते हैं। अथवा आप भोजन करो उस समय आप देखो अच्छी बातें हो, छोटी छोटी बातों से बड़ा ज्ञान होता है। हम भोजन करते हैं उस समय ये सोचो कि हम अकेले ही भोजन नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ भगवान भोजन करते हैं। हमारे अंदर जो भोजन महाप्रसाद जा रहा है अंदर भगवान कर रहे हैं, मैं भगवान को भोजन खिला रहा हूं, ऐसे समझ के भोजन करें। चलते हो तो ऐसा सोच के चलो कि मेरे साथ भगवान चल रहे हैं। कोई भी काम करो भगवान को अपने पास में देखो कि भगवान मेरे पास में है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते अर्जुन मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपस्या का भोगने वाला और संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर समझा करता है, सब प्राणियों का सुहृद हूं, ऐसा मानने वाला शांति को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में भगवान के अलावा कोई नहीं रहता, इसलिए जो करो सब भगवान के लिए करो, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ नहीं है। भगवान के अलावा जो दिखता है वो बहम है, बहम। हमारे शास्त्रों में आता अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इनको नारायण समझो। माँ है वो नारायण का रूप है, पिता है वो नारायण का रूप है, अतिथि है वो नारायण का रूप है। अपने मन को टटोलते रहना चाहिए, कि मेरे अंदर नारायण का भाव जागृत हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग दूसरों के भाव पर दृष्टि डालते हैं, कोई लाभ नहीं है। अपने भाव को टटोलो, अपने में कमी देखो, भाव ऐसा बनाओ कि सब नारायण है। भाव कैसे बढ़ाए? तो भाई मैं जो कहता हूं उस पर विश्वास करो, भाव बढ़ेगा। क्या एक बात तो यह कि जैसे नेत्रों पर हरे रंग का चश्मा लगाने से सब हरा हरा दिखता है, ऐसे ही बुद्धि पर नारायण या हरि का भाव का चश्मा लगाओ, सब नारायण ही नारायण दिखेंगे। ये मन में दृढ़ धारणा करो कि नारायण के अलावा हम किसी को देखेंगे ही नहीं और देख सकते भी नहीं। दिखे सो नारायण, पत्थर दिखे आओ हो, ये नारायण का रूप, ये नारायण का रूप। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब में मुझको देखता है, उसका कभी नाश नहीं होता। आत्मरूप वासुदेव सब जगह रहते हैं, व्यापक है, सबके अंतर्गत है। जैसे संसार में हम जहां भी दृष्टि डालते हैं वो चीज आकाश से अलग नहीं होती, सब में आकाश है, ऐसे सब में भगवान है। ये बात बड़ी गोपनीय है, बहुत मूल्यवान है। ये बात हर किसी के समझ में भी नहीं आती है। तो ऐसा भाव, श्रद्धा करने से भाव बढ़ता है। जैसे कोई मनुष्य है, हम देखते हैं तो साधारण आदमी है, दूसरा आकर हमको कहता है कि अरे साधारण नहीं है, ये बहुत बड़े महात्मा है, तो एकदम हमारी श्रद्धा बदल जाए। महात्मा है, हम तो इनको साधारण आदमी समझते थे। ऐसे आप जा रहे हो, एक नदी दिखाई दी, आपने देख लिया नदी है, कोई आपके अंदर श्रद्धा पैदा नहीं हुई। किसी ने कहा अरे क्या देखते हो, ये गंगा जी है। ओ ये गंगा जी है, तो उसी नदी को हम पहले देख रहे थे, हमारे में श्रद्धा नहीं हुई। लेकिन किसी ने कह दिया कि श्रद्धा है, कि श्रद्धा हो गई। ऐसे ही कोई पारस पत्थर है, हमने देखा ये भी पत्थर है, किसी ने कहा अरे ये पारस है, तो अच्छा पारस है, तो हमारी श्रद्धा होती है, हम सोचते हैं इसको ले ले। इसी प्रकार से श्रद्धा के बिना हम महापुरुष को नहीं पहचान सकते, परमात्मा की दया को भी नहीं पहचान सकते। देखो एक दृष्टांत याद आया। एक कोई महात्मा था, उन महात्मा जी का दर्शन करने के लिए कोई भाई जाता था, तो उसे रास्ते में एक साधु मिल गया। उस साधु से पूछा अरे भाई वो अमुक अमुक नाम के महात्मा ने वो कहां रहता है। उस साधु ने कुछ नहीं बताया था, तो उससे बड़ा गुस्सा आया, उसने दो तीन जूते मार दिए साधु के कि हम तो तुमसे पूछते हैं और तुम बताते नहीं हो। आगे बढ़ गया, जब उस महात्मा के स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वहां तो बहुत से लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, पर अभी तक महात्मा जी नहीं आए। उसने पूछ लिया कि जी महात्मा जी कहां गए हैं, तो उत्तर मिला कि महात्मा जी शौच गए हैं। उसे कुछ शंका हुई कि अरे वो रास्ते में मिले थे वही तो नहीं थे। फिर पूछा कि भाई वो इस कुटिया से इधर गए थे कि इधर गए थे कि उधर गए कि इधर गए। तो किसी ने कह दिया कि वो तो इधर गए थे। अरे गजब हो गया। और वो वहां पर भू भू करके जोर जोर से रोने लग गया। मुझे क्या हुआ? अरे तब तो वही महात्मा जी थे, उनको तो मैंने मारा। ओहो अब क्या करूं, बड़ा व्याकुल हो गया, बड़ा दुखी हो गया, पश्चाताप करने लगा। इतने में महात्मा जी आए, उसने देखा ये तो बड़ी बड़े वही महात्मा जी हैं। बड़ा लज्जित हुआ, बड़ा शोकाकुल हुआ, उनके चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा करो क्षमा करो, बड़ा अपराध बन गया, मैंने अज्ञान से मूर्खता से आपको साधारण आदमी समझ लिया, इसलिए मैंने अपराध कर लिया। मैंने आपके दो चार जूते की मार दी, मुझे क्षमा करो। महात्मा जी ने कहा इसमें क्या अपराध है, इसमें क्या अपराध है, कोई अपराध नहीं। तुम यहां मेरे पास क्यों आए? कि महाराज उपदेश लेने के लिए आए थे, तो तुमने तो अच्छा ही किया। उपदेश लेना कोई अपराध है क्या? कि नहीं महाराज, आप बड़े नाराजी से कह रहे हैं मैंने जूते लगाए, अपमान किया, इस बात के लिए मैं अपराध मानता हूं, तो इसमें भी क्या बात है? तो महाराज मुझे क्षमा करो। महात्मा जी ने कहा भाई अपराध पहले मैं मानू तब क्षमा करूंगा ना। तुम तो शिक्षा लेने आए थे। जो आदमी एक पैसे की हांडी खरीदने जाता है वो उसे ठोक बजा कर लेता है, इस पर तुम उपदेश लेने आए हो। उपदेश तो हांडी से कितना ऊंचा होता है, और तुमने यदि हमारे ठोक बजा करके उपदेश लिया, यही तो तरीका ठीक ही किया तुमने। तुम्हारा क्या कसूर? तुमने तो बहुत ठीक किया। वो इस बात को सुनकर के आश्चर्य में डूब गया, और उनमें वो श्रद्धा करता ही गया, और अंत में वो भी महात्मा बन गया। वो महात्मा क्यों बन गया? वो तो जूता मारता था। वो महात्मा इसलिए बन गया कि उसकी श्रद्धा बढ़ गई। तो श्रद्धा बन जाना, श्रद्धा बढ़िया हो जाना, भाव बदल जाना, यही तो महात्मापन है। इसी प्रकार से भगवान के प्रति भाव बढ़ाने से कल्याण होता है। हमारी बुद्धि में जो एक मैलापन है, भगवान का भाव होने से वो साफ हो जाता है और फिर भगवान दिखने लगते हैं। तो ख्याल रखो, जितने पदार्थ हैं उनमें प्यार पैदा होता है। जैसे मकान है, धन है, परिवार है, इसमें प्यार होता है। ये प्यार नीचे दर्जे का राजसी है, और जो भगवान के प्रति प्यार है वो आत्मजन्य है, उससे हृदय में शांति मिलती है। ये अलौकिक प्यार है, ये प्यार बढ़ते ही बढ़ते चले जाना चाहिए। राग द्वेष खत्म होना चाहिए। किसी में राग द्वेष भावना न रहने से द्वेष खत्म हो जाता है, और द्वेष के खत्म होने के साथ राग भी खत्म हो जाता है। अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, ये सब बातें नष्ट हो जाती हैं। अनुकूलता में जो एक सुख का भाव है, प्रतिकूलता में जो दुख का भाव है, वो नष्ट हो जाता है। तो जो राशि प्रेम है परिवार में, स्त्री आदि में, मकान में आदि में जो राग राजसी है, उससे हम ऊपर उठ जाओ, हमारी वृत्ति बदल जाएगी। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान्य है समय प्रिय है। प्रिय वस्तु को पाकर कभी खुश मत हो, प्रिय वस्तु के अभाव में द्वेष मत करो, शोक मत करो, कामना मत करो, शुभ अशुभ कर्मों के फल के साथ बंधो मत, वो मेरा भक्त होता है। जब ये मनुष्य छोटा बच्चा होता है, तब उसका प्रेम विशुद्ध होता है। छोटे बच्चे का प्रेम राग द्वेष से रहित होता है। जिस प्रकार जड़ और चेतन का भेद है, जैसे प्रकाश और ज्ञान में अंतर है, बुद्धि में जो ज्ञान है वह सूक्ष्म है, नेत्रों में जो प्रकाश है वो बुद्धि के प्रकाश से है, बुद्धि का प्रकाश सूक्ष्म होता है, दोनों में भेद है, डिफरेंस है। तो ज्ञान और प्रकाश में जो भेद है वही राग और द्वेष में है। जो जानने में आता है वो ज्ञेय है, और जो जाना जाता है वो ज्ञान है। जो जानने में आता है वो ज्ञेय है, और जो